लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आने वाले धर्म को धर्म माना है, परंतु शौनकादि ऋषियों पुरुषार्थ चतुष्टय का अपना अलग स्थान है और भगवान में प्रेम करना, भगवान में भक्ति करना ये और भी ऊंची बात है। तो देखो ये पुरुषार्थ चतुष्टय को समझना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार चीजें हैं, चारों मिलकर के ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाता है। तो धर्म है, उसके पास में क्या है, एक तरफ अर्थ है और एक तरफ मोक्ष है। अर्थ के पास एक तरफ धर्म है, एक तरफ काम है। काम के पास एक तरफ धर्म, एक तरफ अर्थ है और एक तरफ मोक्ष है। ये चार युग गोलाई में समझनी चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि धर्म क्या चीज है, कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि विश्वक सेन कथा सुय है, जो भगवान की कथाओं में हमारा अनुराग हो जाए वो तो वास्तव में धर्म ही है। नोत्पादित यदि वो धर्म भगवान में प्रेम पैदा करने वाला नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है। इसकी और बड़ी व्याख्या नारद जी महाराज पांचवें अध्याय में कर देंगे। कहने का मतलब धर्म है भगवान की भक्ति करना, और पुरुषार्थ चतुष्टय अंतर्गत जो धर्म है उसके लिए कहते हैं कि भाई इस धर्म का संबंध अर्थ के साथ न करके इस धर्म का संबंध मोक्ष के साथ होना चाहिए, क्योंकि धर्म के दोनों तरफ बातें हैं, एक तरफ मोक्ष है एक तरफ अर्थ है। तो धर्म का संबंध अर्थ के लिए नहीं, हम कोई भी बढ़िया काम करें उस बढ़िया काम का फल ये नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ संसार से मिलेगा, नहीं नहीं, धर्म से याप वर्गस्य, धर्म का एकमात्र प्रयोजन मोक्ष हो और अर्थ का एकमात्र प्रयोजन धर्म हो वो काम नहीं होना चाहिए। अर्थ का उपयोग धर्म के लिए हो और कामना की पूर्ति के लिए यदि अर्थ का उपयोग किया जाएगा तो वो भी श्रम एव केवलम, श्रम श्रम होगा, इतनी बात नहीं, उससे बड़ी भारी बाधा भी पैदा हो जाएगी। न अर्थस्य धर्म ही कांतस्य कामो लाभा, ये स्मृत है। और इधर काम है, उस काम का उपयोग अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं हो, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों के स्वाद के लिए काम का उपयोग हो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, काम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें तो यहां तक कर सकते हैं कि जिससे निर्वाह हो जाए, लाभो जीवित यावता, जिससे हमारा जीवन चल सके। अब प्रश्न होता है कि जीवन को भी क्यों चलाना है, कि हाँ जीने को केवल सुख के लिए, आराम के लिए, जीने का सुख भोगने के लिए जीना नहीं है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीना हमारा तत्व की जिज्ञासा के लिए है। तो काम का उपयोग वास्तव में तत्व की जिज्ञासा के लिए होना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। नार्थो यश्चेह कर्म भी, इस कामना में फंस करके मनुष्य तरह तरह से पदार्थों में फंस जाए, कर्मों में फंस जाए, इसके लिए ये बात नहीं है। और हे शौनकादि ऋषियों, यदि पुरुषार्थ चतुष्टय का इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो एक अद्वितीय जो परम तत्व है, जिसे ज्ञान मार्गी ब्रह्म बोलते हैं, सगुण निराकारवादी परमात्मा बोलते हैं, सगुण साकारवादी जिसे भगवान बोलते हैं, यह केवल एक शाब्दिक भाषा है। तत्व तो वास्तव में वो एक ही है, अद्वितीय है, उसमें कोई भाषा के भेद से भेद नहीं होता, साधनाओं के भेद से भेद नहीं होता, वो अभिन्न तत्व मिलता है। और यही अभिन्न तत्व है, यही प्राप्त करने से आपकी जितनी जिज्ञासाएं हैं वो सारी की सारी जिज्ञासाएं दूर हो सकती हैं। अतः वर्णाश्रम के द्वारा जो धर्म का अनुष्ठान, उससे केवल भगवान को संतोष हो, भगवान के प्रति भक्ति हो, इसी दृष्टि से हमें धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान की भक्ति का महात्म्य बताया। वास्तव में जीव के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ भगवत भक्ति है, और हे शौनकादि ऋषियों, उस भगवत भक्ति के द्वारा अपने हृदय में रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि जितने विकार हैं, ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। ए चेता एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, जब ये विकारों से हमारा चित्त नहीं बिंधता है तो स्वाभाविक ही उसका स्वरूप सत्व में स्थित हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर इसके हृदय में जितने संदेह की गांठें हैं वो खुल जाती है और सदा के लिए वे कर्मों से अपना पिंड छुड़ा लेता है। वस्तुतः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इनका कोई अलग रूप नहीं है, जब भगवान सत्वगुण को स्वीकार करते हैं तो संसार का पालन करते हैं विष्णु रूप से, जब वे रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मा रूप से संसार को बनाते हैं, और जब तमोगुण को स्वीकार करते हैं तो इन्हीं का नाम हर होता है और संसार का हरण करते हैं। ये बात बता दी जाए कि हे सोनकादि ऋषियों, तमोगुण से बढ़कर रजोगुण है और रजोगुण से बढ़कर सत्वगुण है। जैसे लकड़ी से अच्छा धुआं है और धुएं से श्रेष्ठ अग्नि है, उसी प्रकार से तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। मनुष्यों को चाहिए कि वह तमक गुण व तमोगुण वाले भूतों को, प्रेतों को, इनको न माने और भगवान वासुदेव को ही सर्वेश्वर मान करके अपने समस्त कर्मों को उन्हें ही अर्पित कर देना चाहिए। वासुदेव परा वेदा, वेदों का अंतिम तात्पर्य भगवान वासुदेव है। वासुदेव परा मखः, और जितने यज्ञ हैं इन यज्ञों का करना भी भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए हो। योग है, क्रियाएं हैं, ज्ञान है, इन सब से एक वासुदेव की प्राप्ति होनी चाहिए। वासुदेव परा गति, भगवान वासुदेव ही हमारी अंतिम गति है, ऐसा विचार करके उनमें प्रेम करना चाहिए। हे ऋषियों, जरा मैं तुम्हें सृष्टि का स्वरूप बता दूं संक्षेप में। ये कुछ नहीं, केवल एक भगवान ने अपनी माया से त्रिगुणात्मक सृष्टि को बनाया है। ये माया है सदसद रूपया, ये कार्य कारणात्मक माया है। यही माया सदरूपा भी है, असद रूपा भी है, माने माया है भी और माया नहीं भी है। जब ज्ञान होता है तो माया निवृत्त हो जाती है, और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक माया निवृत्त नहीं होती है। तो निवृत्त नहीं होती है तब तक उसे सद रूप से कहते हैं, और जब वो निवृत्त हो जाती है तब वह असत कहलाती है। वस्तुतः यह सद असद रूप वाली है माया। इसी माया से भगवान संसार को बनाते हैं, बना करके स्वयं उसमें जीव रूप से प्रवेश करते हैं और भगवान तरह तरह से उन विषयों का भोग करते हैं। तो भोक्ता भी भगवान और भोग्य भी भगवान, कैसी विचित्र बात है भगवान की। ऐसे भगवान में कभी भी द्वैत की कल्पना नहीं करनी चाहिए। भगवान जीव रूप से अलग हो गए ऐसी बात नहीं, भगवान भगवत रूप से है तो वो अलग है जीव से ऐसी बात नहीं है। तरह तरह की लकड़ियों में हम आग देखते हैं तो कोई आग बड़ी दिखती है, कोई छोटी दिखती है, तो वो आग बड़ी और छोटी नहीं होती। लकड़ी के बड़े और छोटे होने पर आग की आकृति छोटी और बड़ी दिखती है। अतएव भगवान एक ही है, जैसे आग एक है। नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। इसी प्रकार से ब्रह्मादि से लेकर सामान्य कीट पतंग तक जो जीव है, ये सब के सब भगवान के स्वरूप है। वे ही भगवान सत्वगुण के द्वारा संसार का पालन पोषण करते हैं, लीलाओं के द्वारा, अवतारों के द्वारा सारे जगत को आनंदित करते हैं। वे ही भगवान देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में विराजमान हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान बनाते हैं इस जगत को। अपना स्वरूप कैसा भगवान का, कि जगृहे पौरुषम रूपम। संसार को बनाने से पहले भगवान जो अरूप है वो पहले पौरुष रूप स्वीकार करते हैं। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि भगवान जब सब रूपों वाले हैं तो भगवान का जहां भी चित्र देखें, शिव विग्रह देखें, तो ये पुरुष रूप ही क्यों है। तो इसके विषय में संत महात्माओं का एक निर्णय है कि पुरुष रूप से भगवान अपने को प्रकट करके बताना चाहते हैं कि हे पुरुषों, तुम मेरी प्राप्ति के परम अधिकारी हो। पुरुषों को सावधान करने के लिए और पुरुषों से प्रेम करने के लिए। यूं तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाय। भगवान के अंश होने के कारण से सारे जीव भगवान को प्रिय है, परंतु पौरुष रूप है भगवान का। हाथ है, चरण है, मस्तक है, ये सब स्वीकार करके भगवान पुरुषों को सावधान करते हैं कि मेरी प्राप्ति की अधिकारिता तुम्हारे में है। वे भगवान पंचभूतों को स्वीकार करते हैं और फिर संसार को बनाते हैं। भगवान अपने योग निद्रा में स्थित होकर जिस समय में प्रलय को धारण किए हुए हैं तब भगवान योग में स्थित रहते हैं, योग निद्रा में, और जब संसार को बनाते हैं तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा होते हैं और फिर सारी सृष्टि पैदा होती है और फिर ये सारी सृष्टि ही भगवान का अंग कहलाती है। पृथ्वी भगवान का चरण है और आकाश भगवान की नाभि है, स्वर्गादि लोक है ये भगवान के ऊर्ध्व अवयव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक आदि है ये भगवान के मस्तक है, और जितने जीव भगवान के रूप है ये भगवान का विराट रूप। एतन नानावताराणाम, हजारों हजारों भगवान के नेत्र, हजारों हजारों भगवान के चरण। भाई एक छोटी सी चीज है, अब उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं तो कई चीजें उसमें हो जाती हैं। साबुन का झाग है, यदि उसको एक नाली में लेकर फूंक लगावे उसको, तो फिर कई प्रकार के उसमें झाग पैदा होते हैं थोड़े से के द्वारा। ऐसे ही भगवान कारण रूप से विद्यमान और उनसे कितना ही जीव समुदाय पैदा होता है, ये भगवान का विराट रूप है और उसी विराट रूप में हम सब जीव समाहित हैं। परंतु फिर भी भगवान किसी न किसी प्रकार से अलग अलग अवतार लेते हैं। सनत कुमार रूप से अवतार लेकर वे दुष्चर तप करते हैं, वराह रूप से अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार करते हैं, देवर्षि नारद के रूप में अवतार लेकर वे लोगों को नैष्कर्म की शिक्षा देते हैं। नैष्कर्म माने कर्मों को करते हुए कर्मों के फल से ये मनुष्य अलग रह जाए, ये नैष्कर्म विद्या है, नारद जी ने अपने संगीताओं में बताया है। भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या की शिक्षा देते हैं, भगवान दत्तात्रेय के रूप में ज्ञान की शिक्षा देते हैं, वैराग्य की शिक्षा देते हैं, कपिल के रूप में उन्होंने काल विप्लुतम, जो बहुत लंबे समय से सांख्य शास्त्र लुप्त हो गया था उस सांख्य को वे प्रकट करते हैं, और वे यज्ञ रूप से अवतार लेकर यामादि देवताओं की रक्षा करते हैं, ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर वे धीर पुरुषों को आनंदित करते हैं, परमहंस विद्या का प्रचार करते हैं, वे भगवान पृथ्वी रूप से अवतार लेकर गाय का दोहन करके सारे के सारे प्राणियों को आनंदित करते हैं, मत्स्य रूप से अवतार लेकर सृष्टि के बीज तत्व की रक्षा करते हैं, कमठ रूप से अवतार लेकर समुद्र मंथन के समय में मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं, धन्वंतरी रूप से अवतार लेकर अमृत प्रकट करते हैं, और मोहिनी रूप से अवतार लेकर भगवान अमृत का संविभाग करते हैं। देखो समुद्र मंथन के अंदर एक ही भगवान की एक साथ कई लीलाएं दिखती है, ये लीला बड़ी विचित्र है। भगवान नरसिंह रूप से अवतार लेकर अपने भक्तवत्सलता को प्रकट करते हैं, वामन रूप से अवतार लेकर धर्मात्माओं की महिमा को बढ़ाते हैं, और परशुराम रूप से अवतार लेकर क्षत्रियों में बढ़े हुए घमंड को दूर करते हैं, और फिर सत्यवती के यहाँ पराशर से अवतार लेकर वेदव्यास के रूप में वे वेदों का विभाग करते हैं, लोगों को वेदों का ज्ञान करवाते हैं, और साथ ही साथ इक्ष्वाकु वंश में अवतार लेकर राक्षसों का संहार करते हैं। बलराम और श्री कृष्ण के रूप में तो पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उन्होंने हल्का किया है, वे ही भगवान बुद्ध रूप से अवतार लेंगे। देखो भागवत कैसा विचित्र ग्रंथ है, भागवत में बहुत सी लीलाओं को भविष्यत के रूप में कहा है, बहुत को भूत रूप से कहा है, और बहुतों को वर्तमान रूप से कहा है। तो ये भागवत त्रिकाल तीनों ही काल में रहने वाला ज्ञान है भागवत का, क्योंकि बताया कि भागवत सत्य तत्व को प्रकट करने वाला है, और सत्य है वो त्रिकाला बाधित है, त्रिकाल में कभी भी उसका नाश नहीं होता, त्रिकाल सत्य होता है वही सत्य होता है। तो लीलाओं में भी बहुत सी लीलाएं भूतकाल के रूप में कही है और बहुत सी लीलाओं को भविष्यत काल में कही है। तो बुद्ध के लिए कहा कि कीकट देश में बुद्ध नाम का भगवान का अवतार होगा और उसमें लोगों को मोहित करके एक बार वेदों से हटाया जाएगा, और आगे जाकर कलयुग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कल्कि के रूप में भगवान अवतार लेंगे और दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि सौनकादि ऋषियों, जितना जो कुछ संसार में विशेषता से दिखता है, सामान्यता से दिखता है, ये सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के अवतारों को कोई कह नहीं सकता है। जिस प्रकार से एक ही नदी के कितने विभाग हो जाते हैं, यथाविद आसिन कुल्या सरसस्यु सहस्रशः, एक तालाब से कितने ही रूप से उसका पानी निकल जाता है, इसी प्रकार से एक ही भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। तो एते चांस कलाप उनसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जितने जीव हैं ये भगवान के अंश हैं और वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके अवतारों की बड़ी विचित्र महिमा होती है। वे अवतार भगवान के बड़े गोपनीय हैं। भगवान का जन्म भी बड़ा रहस्यमय है, भगवान का कर्म भी बड़ा रहस्यमय है। भगवान बिना रूप वाले हैं, फिर भी वे भगवान ये रूपात्मक जगत का निर्माण करते हैं। इससे बढ़कर और क्या विचित्र भगवान की महिमा होगी। वे अपनी माया के द्वारा बनाते हैं, लेकिन अबुद्धि लोग हैं, वे भगवान को और इस जगत को अलग अलग मानते हैं। इसलिए अलग अलग न मान करके बुद्धिमान व्यक्ति उनको एक ही माने, यही हमारा तात्पर्य है। उन्हीं भगवान से जीव निकलता है, ये भगवान की सूक्ष्म प्रकृति है। भगवान की दो प्रकार की प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति। इसे श्रीमद् भगवद गीता में परा अपरा के नाम से सातवें अध्याय में कहा है और श्रीमद् भागवत में इसे सूक्ष्म और स्थूल के रूप में कहा है। दृश्य जगत है ये भगवान की स्थूल प्रकृति है और ये जीवात्मा है ये भगवान की सूक्ष्म प्रकृति है। जब ये जीव अपने स्वरूप को आप ज्ञान कर लेता है तब इसकी अविद्या से निवृत्ति हो जाती है और वे अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने आप को संपन्न मानकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। तो भगवान अवतार इस जीव को अपनी महिमा बताने में है कि जीव अपनी महिमा समझे, जीव यह समझे कि मैं किसका हूं और मेरा किसके साथ संबंध है। इसी को ही ऋषियों ने महात्माओं ने भगवान के महिमा के द्वारा जीव को सावधान किया है। शौनकादि ऋषियों, ये भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र है। भगवान संसार को बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें न सज्जते अस्मिन आसक्त नहीं होते, वे संसार में किसी प्रकार से चिपकते नहीं है। भगवान की महिमा को कोई तर्क आदि के द्वारा जान नहीं सकता है। सामान्य बाजीगर है उसके जादूगरी को भी कोई नहीं पहचान सकता हर आदमी, परंतु जो उस जादूगर के पास जमूरा होकर रहता है उसको कोई आश्चर्य नहीं होता। इसी प्रकार से जो निष्कपट भाव से भगवान का भजन करता है, तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमल का जो आश्रय लेता है, वो भगवान की माया में कभी भी डूबता नहीं, कभी भी आसक्त होता नहीं और उसको भगवान की माया में कभी आश्चर्य होता भी नहीं। इसलिए आप लोग बड़े धन्य हैं, भगवान वासुदेव में आपकी ऐसी भावना हो गई है। आप सर्वात्म भाव से भगवान वासुदेव का भजन कीजिए ताकि इस घोर कलयुग में, घोर संसार में आना न पड़े। आपने कहा भगवान का चरित्र सुनाओ, तो भाई मैं समस्त पुराणों के सार के रूप में, सारे ज्ञान के सार के रूप में भागवत पुराण को बहुत श्रेष्ठ मानता हूं, जिसे ऋषि प्रवर वेद व्यास जी ने बनाया है। लोगों के कल्याण की भावना उनके अंदर थी और इसी भागवत के द्वारा उन्होंने अपने पुत्र को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज चले गए थे पिता को छोड़कर, तब वे दुखी हो गए थे, तब उन्होंने भागवत बनाई और भागवत बना करके उन्होंने सुखदेव को प्राप्त किया था। सुतम आत्मवतांबरम ग्राहया मासे, और अपने पुत्र को उन्होंने भागवत सुनाया। ये भागवत संपूर्ण वेदों का, इतिहासों का सार है। सार नहीं, सारम सारम समुद्रितम, सार का सार, सार का सार, सार का सार का अर्थ है भागवत में कोई भी चीज त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्राह्य है। वो उन्होंने सुनाया सुखदेव जी महाराज को सुनाया और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। गंगा के तट के ऊपर अन्न जल का त्याग कर जब परीक्षित ऋषियों के बीच बैठे हुए थे, तब उस समय में ये श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने सुनाया। और हम तो ये कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के धराधाम छोड़ने के बाद जब ये धर्म घबराया तो वो धर्म और किसी की शरण में नहीं, इसी भागवत की शरण में आया। कृष्णे स्वधामोपगमे धर्म ज्ञानाधिविस्सह, जिस समय में लोगों की दृष्टि कलयुग के अंदर अंधी हो जाती है, वहां पुराणों के अधुनोदित है, ये पुराणार्क है, ये पुराण रूपी सूर्य ये उदित हुआ है। मेरा बड़ा भारी सौभाग्य था कि मैं भी वहां बैठा हुआ इस भागवत को सुना था। सो अहम च अध्यगमम तत्र, मैंने स्वयं सुखदेव जी के मुख से सुना है। प्रविष्ट तद अनुग्रहात, उस भागवत की दिव्य सभा में हम जैसों को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन उस सुखदेव जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं भी वहां पर बैठा हुआ उसको सुना हुआ था, सुना हुआ सुना हूं और वही मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसी बात सुनकर के सौनक जी महाराज पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, आपके भाग्य की हम क्या वंदना करें। आपने बड़ी विचित्र बात बताई कि भागवत को सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित जी ने सुना है, परंतु ये एक बात बताओ कि ये भागवत कब बनाई गई, ये भागवत किसने बनाई और किसके द्वारा प्रेरित होकर के बनाई गई, केन हेतुना, भागवत का वास्तविक प्रयोजन क्या है, किस कारण से बनाई, ये हमको सुनाइए। देखो एक बात पहले बता दे, श्रीमद् भागवत का एक एक स्कंद है, उसका एक एक विलक्षण नाम भी है। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय विषाद योग के नाम से प्रचलित है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद है ये विषाद स्कंद है। माने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की अधिकारिता का निरूपण किया गया है कि गीता का अधिकारी कैसा होता है, वो अर्जुन के समान देखना चाहिए, अर्जुन की क्या स्थिति है। न च श्रेयो नु पश्यामी, वो कल्याण ही चाहता है, परंतु नकांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किमनो राज्येन गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा। उसको संसार की मस्ती नहीं चाहिए, संसार के भोग नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमको हमारा कल्याण चाहिए। तो जैसे अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा थी, भोगों की इच्छा नहीं थी, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो पहला स्कंद है उसमें चाहे भागवत के वक्ता हो, चाहे भागवत के श्रोता हो, कोई हो, सबका आप चित्रण देखेंगे तो सब बड़े संसार से ऊपर उठे हुए, संसार के भोगों से उबे हुए, संसार से ऊपर उठे हुए मिलेंगे और विषाद अवस्था को प्राप्त हुए हुए, विषन्न है बेचारे, दुखी है। दुखी केवल संसार के अभाव को लेकर नहीं, दुखी है भगवान के प्रेम में और दुखी है वे अपने कल्याण के विषय में। तो ये सब भूमिका उसी के लिए बांधी जा रही है। और यहां दुखी भी है तो उनका दुख भी बड़ा दिव्य है। कितना महान घटिया से घटिया पात्र भी भागवत के पहले स्कंद का आप देखेंगे तो उसका भी दुख है, वो बहुत अच्छा दुख है, ऐसा दुख होना चाहिए, वो दुख है। बड़े सावधानी के साथ आप लोग सुनेंगे तो ये पता चलेगा कि पहले स्कंद के कितने दिव्य पात्र हैं। शौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ये वेदव्यास जी के पुत्र हैं, ये तो समन्वरिंग निर्विकल्पक है, सबके अंदर समान दृष्टि रखने वाले थे, बिना किसी प्रकार का कोई भेदभाव के भी देखा करते थे, एकांत में रहने वाले थे, लोगों के सामने अपने आप को छिपा करके रखते थे, फिर वे राजा परीक्षित से कैसे जाकर मिले, राजा परीक्षित का और सुखदेव का क्यों संवाद हुआ। हमने तो यहां तक सुना है कि सुखदेव जी तो आगे आगे जा रहे थे और पीछे पीछे वेदव्यास जी जा रहे थे, तो रास्ते में एक तालाब के अंदर युवतियां स्नान कर रही थी, स्नान करने वालों ने जब 16 वर्ष के उस सुखदेव को देखा तो उनको कोई लज्जा नहीं आई, स्नान करती रही। और जो ही वो बूढ़े महात्मा वेदव्यास जी उसी मार्ग से पीछे पीछे बेटा बेटा कर चिल्ला रहे थे, तो उन कुमारियों को बड़ी लज्जा आई, वे तत्काल उस सरोवर से बाहर निकल करके कपड़ा पहनी, संकोच हुआ और वेदव्यास जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो वेदव्यास जी ने उनसे पूछा, अरे भाई तुम तो मेरे लिए पौत्रियों के समान हो, माने मेरे लिए बहुत छोटी छोटी बच्चियां हो, तो तुमको मेरे सामने तो इतनी लज्जा आई और अभी यहां से नंग धड़ंग एक किशोर निकला था उसको देखकर लज्जा नहीं आई, बात क्या है। तो उन किशोरियों ने कहा, महाराज लज्जा अवस्था से नहीं आती है, लज्जा बुद्धि से आती है। आपकी बुद्धि में स्त्री और पुरुष का भेद बैठा हुआ है, लेकिन आपके पुत्र सुखदेव में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, अतः उसके सामने कोई लज्जा का प्रश्न ही नहीं है। स्त्रीपुं विदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, उसके एकांत दृष्टि एक ही दृष्टि है। ऐसे सुखदेव जी राजा के राजा परीक्षित के पास में जावे और उनको भागवत सुनावे, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। कैसे उन और वे सुखदेव जी महाराज इतने ऊंचे महात्मा हैं, इस बात को कौन समझेगा, कौन उनको समझाएगा परीक्षित को, तो ये हमारी समझ में नहीं आई। पहली बात तो सुखदेव जी के विषय में, माने भागवत का वक्ता भी बड़ा विचित्र, उसका चरित्र भी बड़ा विचित्र, तो उनका सुनाना क्यों हुआ? गाय दुबे इतनी देर तो वो ठहरने वाले, और उन्होंने 7 दिन में कथा सुनाई, 7 दिन के लिए परीक्षित के लिए ठहर गए 7 दिन में, ये आश्चर्य नहीं तो क्या है? चलो परीक्षित के विषय में हम पूछते हैं, उसका भी जन्म बड़ा दिव्य है। वो एक युवा था, वो गंगा जी के तट के ऊपर अनशन करके बैठ गया। उसके मन में आखिर कल्याण की ऐसी इच्छा क्यों पैदा हुई? क्योंकि कल्याण की इच्छा तो जिसके पास सामान्य भोग होते हैं उनके भी बड़ी मुश्किल से होती है। बड़े बड़े राजा लोग जिसके चरणों में शीश झुका झुका करके मुकुटों की मणियों को घिसते थे और बड़े बड़े भेंट लाकर रखते थे, ऐसे वे राजा लोग दर्शन करके कृतार्थ होते थे। परीक्षित उन सबको अभय देता था, इतना परीक्षित का स्थान था। लेकिन वे परीक्षित युवा होकर के भी इस राज संपत्ति को ठुकरा करके गंगा जी के किनारे बैठे, इसमें क्या हेतु है? ये सब बातें आप हमें सुनाइए। मन्ये त्वाम विषये वाचा स्नात मन्यत्र छांदसात। महाराज ज्यों ज्यों आप थोड़ी थोड़ी बात हमको बता रहे हैं, क्यों क्यों ऐसा लग रहा है कि हम कोई बहुत अच्छे जल से स्नान करके जैसे कोई पवित्र होता है, ऐसे हम पवित्र हो रहे हैं। आपकी वाणी अत्यंत पवित्र है, आप उस बात को सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि पहले तो हम आपको ये बतावें कि भागवत का आविर्भाव कैसे हुआ। भागवत का आविर्भाव, फिर परीक्षित का आविर्भाव, और फिर सुखदेव का आविर्भाव। ये सब जानने से भागवत के रहस्य का ज्ञान होगा। तो बताते हैं कि देखो, ये द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, ये इस समय में जो संधि चल रही है कलयुग में 27वां चतुर्युग है। तो कहते हैं कि द्वापर के बीत जाने के बाद जब कलयुग के अंदर 27 चतुर्युगी बीत गई, माने इस ब्रह्मा जी के यहां इस समय में 27वां चतुर्युग चल रहा है, तो 27वें चतुर्युगी के बीतने के बाद अब जो ही ये द्वापर की समाप्ति हो रही है, ऐसे समय में वेदव्यास जी का सत्यवती के यहां जन्म हुआ। सरस्वती नदी के किनारे एक बार वो बैठे हुए थे, उनके मन में आया कि भाई लोगों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि धीरे धीरे इस कलयुग के आने पर लोगों का आचार विचार सब समाप्त हो रहा है, लोगों की श्रद्धाएं नहीं रही हैं, लोग बड़े दुर्भाग्य के जीवन में जी रहे हैं, इसलिए इन लोगों का कल्याण कैसे हो। तो उन्होंने वेदों का चार विभाग कर दिया, चार विभाग करके चार शिष्यों को उन्होंने वेद पढ़ा दिए, और उस प्रकार से चार शिष्यों से फिर अनेक प्रकार की परंपरा चल पड़ी। ऋग्वेद है वो उन्होंने पैल को पढ़ाया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया, और यजुर्वेद वैशंपायन को पढ़ाया, और अथर्ववेद सुमंतु को पढ़ाया, और रोमहर्षण जी को उन्होंने 5वां वेद के रूप में इतिहास और पुराणों को लेकर के वो बताया, और श्रीमद् ये महाभारत है यह उन्होंने रोमहर्षण जी को बताया। इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ लिखने के बाद भी मन में विचार किया कि भाई स्त्रियों का, शूद्रों का, औरों का कल्याण कैसे हो, तो महाभारत के द्वारा वो कल्याण की बात बता दी। फिर भी वेदव्यास जी के मन में किसी प्रकार से संतोष नहीं हुआ। मन में आया कि भाई क्या बताऊं, मैंने जो कुछ ज्ञान था सब लिख दिया, मेरे मन में संतोष क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञान हो और संतोष न हो, ये दो बात होगी नहीं, कहीं ना कहीं मेरे लिखने में कमी रह गई है। इस प्रकार से वो विचार कर रहे थे। इतने में ही उनके आश्रम में नारद जी महाराज आए, वीणा पाणी नारद जो ही आए, वेदव्यास जी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। ध्यान देना हो एक बात और बता दें कि पहले स्कंद की कथाएं हैं, ये और स्कंदों के साथ भी जुड़ती रहती हैं। नारद जी यहां बेहोशी में नहीं आए हैं, नारद कोई यदृच्छा से नहीं आए हैं, नारद कोई यहाँ आकस्मिक उनका आना हो गया ऐसी बात नहीं है। नारद जी के मन में थी कि मैं अब जाकर किसी एक श्रेष्ठ पुरुष से मिलूं, ये मन में उनके क्यों आई ये बात हम आपको श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के वेद स्तुति के प्रकरण के साथ जोड़ करके बता सकते हैं। तो नारद जी महाराज को खुद को खोज थी वेद व्यास जी के पास आने की। वेद व्यास जी के पास आए, वेद व्यास जी महाराज ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, ऊंचे आसन पर बैठाया और फिर नारद जी महाराज मुस्कुराते हुए वेद व्यास जी से कहने लगे कि व्यास जी क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आप जैसे महात्माओं की चिंता है दुख है ये और विचित्र ढंग की होती है। कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिबृंहितम, आपने महाभारत जैसा ग्रंथ बना दिया जिसमें सारे के सारे शास्त्रों के तात्पर्य उसमें है, फिर आप अपने आप में कुछ अभाव का अनुभव कर रहे हैं, कुछ आप विचार में डूबे हुए हैं, अकृतार्थ एव प्रभु, आपको शायद ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्या इस बात से आप दुखी हैं? व्यास जी ने कहा कि नारद जी महाराज, संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जैसे वायु का संचरण है ऐसे आप सबके मन की बात जानने वाले हैं, बिल्कुल सत्य बात है, मेरे मन में कुछ अभाव खटक रहा है और वो क्या अभाव है मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, यदि आप जानते हैं तो बताइए, आप नहीं जानते हैं तो बात है ही नहीं, अगाध बोधम, आपका बोध आपका ज्ञान किसी प्रकार से पकड़ में आने वाला नहीं, बड़ा गहरा है, मेरी चिंता का कारण आप बताओ। नारद जी कहने लगे यही बताने के लिए आया हूं व्यास जी, देखो आप बुरा न मानना, आपने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बड़ी अच्छी व्याख्याएं की हैं, परंतु आपने भगवान वासुदेव की लीलाओं को नहीं लिखा है। याद रखिए व्यास जी, कोई वाणी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे अलंकार हैं, वाक्य विन्यास भी बहुत अच्छा है और उसमें बड़े अच्छे अच्छे छंद हैं, लेकिन भगवान के यश का निरूपण नहीं किया है तो वो वाणी वास्तव में कौओं के बैठने की जगह है, वो हंसों के बैठने की जगह नहीं है। तद्वायसम तीर्थम उशांति मानसा नयत्र हंसा निरमंत उशिक्षया, उशिक माने, उशिक माने बहुत ही सुंदर, चाहे पद्म हो चाहे ब्रह्म हो, क्षय माने निवास, माने जैसे हंस है वो कमलों में ही रहते हैं, कौवे हैं वो जैसे गंदगी में रहते हैं, ऐसे ही बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं बना दो, तुकबंदी बना दो, उसमें तरह तरह का अनुप्रास लगा दो, छंद लगा दो, लेकिन वो सामान्य पुरुषों को आनंदित करने वाली हो सकती है, वो हंस परमहंस पुरुषों को आनंदित नहीं कर सकती। इसी प्रकार से जैसे कोई कौओं के रहने की जगह वो हंसों के रहने की नहीं होती, और दूसरी तरफ जहां वाक्य विन्यास भी ठीक नहीं है और जहां तुकबंदी भी नहीं है, लेकिन भगवान के यश का वर्णन किया गया है, संत महापुरुष उस वाणी को अपने सिर पर रखते हैं, उसका आदर करते हैं। हे महाभाग, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं का चिंतन कीजिए, भगवान कोई ऐतिहासिक वस्तु नहीं है, ऐतिहासिक पात्र नहीं है कि भगवान को जब जो लीलाएं करनी पड़ी थी वो कर ली और अब वो भगवान की लीलाएं नहीं है, नहीं नहीं, भगवान तो सर्व लीलाधारी, नित्य लीलाधारी, भगवान की सभी लीलाएं सभी अवस्थाओं में हो रही हैं, क्योंकि भगवान किसी काल के अंदर आकर के लीला नहीं करते हैं, काल के ऊपर लीला करते हैं, इसलिए आप समाधि लगा करके भगवान की लीलाओं को ध्यान में लाइए और उन लीलाओं को आप लिखिए। आपने बहुत लंबा चौड़ा धर्म का विस्तृत वर्णन कर दिया, पर आप विचार करो कि किसी आदमी ने धर्म का तो खूब पालन किया है लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं किया है, तो ऐसे धर्म का पालन उसके लिए कोई काम का नहीं, और जिसने भगवान का भजन तो खूब किया है, धर्म का पालन वो कर नहीं सका है और भजन भी उसका पूरा नहीं हुआ है। देखो सावधानी से सुने, भागवतकार कितनी विचित्र बात कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वोथ पते ततो यदि, अपने धर्म का तो पालन हुआ नहीं और भगवान का भजन है वो परिपक्व वो नहीं हुआ, अध किचरा रहा तो भी कहते हैं उसका कभी किसी प्रकार से विनाश नहीं होता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, यत्र क्व वा अभद्रम अभूद अमुष्य किमको वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मत, अपने धर्म का पालन किया और भगवान का भजन नहीं किया उसको कुछ नहीं मिला, और जिसने अपने धर्म का पालन नहीं किया और भगवान का भजन उसने किया लेकिन वो पका नहीं बीच में चला गया तो कहते हैं उसका कोई हानि नहीं हुई है। इसलिए भगवान के भजन की महिमा बड़ी विचित्र, व्यास जी महाराज उस भक्ति योग के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। सांसारिक धर्म आदि का पालन करने से सांसारिक सुख दुख की प्राप्ति जीव को तो काल के द्वारा स्वतः ही होती रहती है। इसलिए यदि आप इन जीवों को वास्तविक रस देना चाहते हो, अमृत पिलाना चाहते हो, तो भगवान की कथाओं का निरूपण कीजिए। मैंने आपको इशारा कर दिया है, बुद्धिमान आदमी को तो इशारा बहुत काफी है। प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, संकेत मात्र मैंने आपको कहा है, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप सब जान सकते हैं। देखो ये अमोघ दृग है वेदव्यास जी और अमोघ दृग है नारद जी, दोनों एक दूसरे को अमोघ दृष्टि वाले बताते हैं। कहते हैं देखो वेदव्यास जी, सारे तपस्याओं का, सारे वेदों का, सारे बुद्धि आदि का, सबका अंतिम निरूपण यही है कि यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र का वर्णन किया जाए। मैं अपनी दशा बताता हूं, आज मैं नारद हुआ हुआ आप लोगों के बीच में आदरणीय बना हुआ हूं, वास्तव में मेरी बात मैं आपको सुनाऊं। आप देखो नारद जी पहले स्कंद में अपनी बात बता रहे हैं। नारद जी अपना चरित्र दो जगह बताएंगे, एक तो यहां अभी बता ही रहे हैं और एक सातवें स्कंद में भी बताएंगे। अब बड़ा आश्चर्य है कि यहां लीला बता रहे अपने पूर्व जन्म की बात तो सातवें स्कंद वाली भी यहां बता सकते थे, लेकिन नहीं, प्रत्येक स्कंद के अंदर जो कथाएं आई हैं वो कथाएं एक विशेष कारण से आई है। यूं ही कथाएं नहीं लिख दी कि भाई ये भगवान के हम ये लीला लिख रहे हैं, अब ये लीला लिख रहे हैं, इस ढंग से भागवत में कथा नहीं है। जिस स्कंद के लिए जो प्रसंग है उस प्रसंग के अंतर्गत ही जो लीला होनी चाहिए वो लीला वहां आई है। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो वेदव्यास जी, मैं अपने पिछले जन्म की एक बात बताता हूं। मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था, मैं अपनी मां के पास रहता था। एक बार अच्छे अच्छे वेदवादी संत महात्मा हमारे यहां चातुर्मास करने के लिए गांव में आए। उस समय में मेरी मां उन महापुरुषों की सेवा में लगी हुई थी, मैं संतों के पास में बैठता था। उस समय में खेलने में मेरी अवस्था थी लेकिन खेलने में रुचि नहीं देखी तो संतों ने मेरे पर बड़ी कृपा की। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, संत महात्मा तो सब पर कृपा करने वाले होते हैं, परंतु फिर भी उन ऋषियों ने मुनियों ने मेरे पर इसलिए कृपा की कि अद्रित क्रीडन के अनुवर्तिनी, मैं बाल्य अवस्था में भी क्रीडा से चपलता से रहित था और बहुत कम बोलता था, इसलिए ऋषि मुनि मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए। मैं उनका उच्छिष्ट खाता था, उनके पास ही बैठता था, मैं बहुत छोटा था, वो मेरे को अपने पास में बैठा करके भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनाते कि देखो बेटा ऐसे कृष्ण देवकी के बेटा थे, ऐसे वे यशोदा के पास चले गए, इस प्रकार से कृष्ण ने लीलाएं की। तो मैं उन कृष्ण की कथाओं को बड़े प्रेम से सुनता था। तो व्यास जी महाराज क्या हुआ, वो कथा सुनते 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 प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद रुचि, मेरी श्री कृष्ण में प्रीति पैदा हो गई। और ऐसी प्रीति पैदा हुई तो उस समय में हमारे गुरुजन हमारे संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। फिर शरद ऋतु, फिर वो प्रावृत ऋतु व्यतीत हो गई, शरद ऋतु आई, चातुर्मास व्यतीत हो गया। तो जाते जाते उन्होंने हमको एक मंत्र भी दे दिया और थोड़ा ज्ञान भी दे दिया, अन्वोचन गमिष्यंत। जाते जाते उन्होंने कहा कि देखो बेटा, इस संसार में जहां से बंधन होता है वहीं से मुक्ति होगी। आमयो यश्च भूतानाम, जहां बीमारी है निरोगता भी वहीं से प्रारंभ होगी। अरे पेट में यदि गलत चीज खाली है और बीमारी हो गई तो पेट में अच्छी चीज पहुंचा दो, औषध पहुंचा दो, तो वही वो बीमारी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से कर्मों से जीव का बंधन होता है तो इन कर्मों को परमात्मा के लिए अर्पित कर दो तो इन कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। ये उन्होंने हमको सूत्र रूप में बात बताई और साथ ही साथ उन्होंने ये हमको मंत्र भी दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये हमको मंत्र दिया, इस मंत्र का के तुम जाप करते रहना। भगवान की कथा तो उन्होंने सुनाई दी थी, इस प्रकार से वे अपने अपने स्थान पर चले गए, मैं अपनी माँ के पास रह गया। तो वेद व्यास जी महाराज, उसी कृष्ण कथा का आज मेरे पर प्रभाव है कि मैं कृष्ण भगवान के अंदर प्रेम रखने वाला हुआ हूं, तो आप भी कृष्ण की कथा को सुनाइए। व्यास जी ने पूछा कि नारद जी महाराज, जन्म तो पहले हम लोगों के भी होते हैं, औरों के भी होते हैं, उन लोगों को तो अपने जन्मों की बात याद नहीं रहती, आपको अपने पिछले जन्म की बात याद क्यों है, ये हमको बताओ। दूसरी ये बात बताओ कि जब आपको संतों ने इतना बड़ा विलक्षण ज्ञान दे दिया, आपकी तो छोटी अवस्था थी, फिर आपकी आगे जाकर जीवनी कैसे महात्माओं के उपदेश में चली, ये हमको विस्तार के साथ सुनाओ। नारद जी कहने लगे कि हे वेद व्यास जी महाराज, जब वे संत महात्मा चातुर्मास पूरा करके चले गए, तब मैं अपनी माँ के पास ही रहा। मैं उस समय कोई 5-6 वर्ष का ही रहा हूंगा। एक बार की बात है कि मेरी माँ मेरे निवास स्थान के पास में गई, माने एक बाड़े में गई, और वहां बाड़े में एक सर्प रहता था, गाय दूने के लिए बाड़े में गई तो वहां एक काला नाग था, वो काला नाग मेरी माँ को डस लिया और इस कारण से मेरी माँ का वहीं पर शरीर शांत हो गया। ध्यान देवे, नारद जी अपना चरित्र कैसा बता रहे हैं, मेरी माँ के मरने के बाद अनुग्रहम मन्यमान है, मैंने भगवान का बड़ा अनुग्रह माना कि बहुत अच्छा है, मेरी माँ मर गई, भगवान ने बड़ी कृपा की। अरे 5 वर्ष का बालक, माँ मर जाए, पिता हो नहीं, माँ मर जाए, क्या उसकी दशा हो। तो नारद जी कहते हैं, मैंने तो यही माना कि भगवान की कृपा है। क्यों? क्या भक्तानाम सम अभीप्सित है, भगवान तो सबका कल्याण ही करते, भगवान तो सबका भला ही करते, भगवान सबके लिए अनुकूलता ही अनुकूलता करते, वो तो हमारी बुद्धि ऐसी है कि किसी को अनुकूल और किसी के प्रतिकूल मान लेते हैं, इस कारण से हम भगवान की महिमा को जान नहीं सकते। मैंने देखा कि इतने दिन तक यदि माँ थी तो माँ के स्नेह में मुझे रहना पड़ता, और माँ का भी मेरे पर इतना प्यार था कि मैं माँ को छोड़ नहीं सकता था, लेकिन मेरे मन में थी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का भजन करूं, लेकिन माँ के कारण से कहीं जा भी नहीं सकता था। लेकिन मेरी माँ के मर जाने के बाद मैं उत्तराखंड में चला गया, कई नदियों को, पर्वतों को, जंगलों को पार करके एक पवित्र सरोवर के किनारे गया, भूखा प्यासा तो था ही, जल वगैरह पी करके एक पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठ गया। न मुझे भूख की चिंता, न मुझे प्यास की चिंता, मुझे तो महात्माओं ने तो दे दिया था मंत्र और भगवान का स्वरूप जो बता दिया, मैं बैठ करके वो ध्यान करने लग गया। जो मेरे मन में स्वरूप महात्माओं ने बैठाया, उसका ध्यान करते करते इतना प्रेम हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसू आने लग गए, हृदयासीन में शनै हरि, और वे भगवान मेरे हृदय में आकर बैठ गए, मेरे ध्यान में आ गए। बड़े प्रेम के साथ ध्यान कर रहा था मैं, सब कुछ भूल गया, और भगवान का परम मनोरम जो स्वरूप है वो स्वरूप मेरे ध्यान में आने लग गया। अब थोड़ी देर के बाद देखता हूं कि वो भगवान का स्वरूप में मेरे हृदय में नहीं है। मैं घबराया, अरे भाई, जिस स्वरूप का मैं ध्यान कर रहा हूं वो स्वरूप क्यों नहीं मुझे दिखाई देता है। ऐसे में आकुल व्याकुल हुआ, इतने में ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि भाई, हे नारद, मैंने तुमको जो दर्शन दिया ध्यान में, ये मेरी कृपा से मैंने दर्शन दिया था, वह मैंने संतों के महात्माओं के उपदेश को तुमने बड़े प्रेम से सुना, इसलिए दर्शन दिया था। सकृत यद दर्शितम रूपम, मैंने जो ये पावन स्वरूप तुमको दिखाया है वो केवल मेरी ओर लगाने के लिए तुमको दिखाया है, अभी तुम्हारी साधना बहुत बाकी है, उस साधना को तुम पूरा करो और फिर मैं तुमको दर्शन दूंगा। सत्सेवया अदीर्घयापि जाता में दृढ़ा मति, ध्यान से सुने कि तुमने संतों के पास में रहकर सत्संग किया था, थोड़े समय का सत्संग का भी फल यह है कि तुम्हारी थोड़ी छोटी अवस्था में भी, योग के अपरिपक्व अवस्था में भी मैंने तुमको दर्शन दे दिए हैं, अब दोबारा दर्शन मैं नहीं दूंगा। हाँ, जब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा तब अगले शरीर में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और मेरी कृपा से महात्माओं का जो उपदेश है और तुम्हारे पिछले जन्म की जो ये जीवन चर्या है, ये तुम्हारे आगे भी हृदय में स्मृति में रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रजा सर्ग निरोधे भी महाप्रलय के समय में भी स्मृतिश्च मद अनुग्रहात, मेरी स्मृति तुम्हारे अंदर रहेगी, मेरी कृपा के कारण ये सारा का सारा जीवन तुम्हारे स्मृति में रहेगा। इस प्रकार से आकाशवाणी तो बोल चुकी, मैंने आकाशवाणी को प्रणाम किया और मेरे मन में इतना उत्साह आया कि ओह भगवान अब हमको अगले जन्म में दर्शन देंगे, कितनी भगवान की कृपा है। देखो यही वास्तव में भक्त की लक्षण की बात है, जो भगवान पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो वास्तव में भगवान को प्राप्त हो ही जाता है। एक भक्त की कथा आती है, एक भक्त थे, एक जगह बैठ करके तपस्या कर रहे थे। इतने में नारद जी वहां आए, नारद जी उधर से जा रहे थे तो भक्तराज ने कहा, नारद जी महाराज बड़ी कृपा की, आपके दर्शन हो गए, कहां पधार रहे हैं? कि भाई हम तो आज बैकुंठ में जा रहे हैं। तो बैकुंठ में आप जाएंगे तो भगवान के विषय में जरा, भगवान के पास में हमारे विषय की थोड़ी चर्चा चला देना कि अमुक अमुक गांव में अमुक अमुक एक भक्त है, वो आपको याद कर रहा है, उसको आप कब दर्शन देंगे? भगवान नारद जी ने कहा, अच्छी बात है, पूछ लेंगे। बस वो जो जवाब देवे, वो जवाब एक बार कृपा करके आप हमको बता देना, बस इतनी आप कृपा करके हमारी ये प्रार्थनाएं स्वीकार कर लीजिए और हमको बता दीजिए। कि अच्छी बात। नारद जी महाराज नारायण नारायण करके रवाना हो गए, गए बैकुंठ में, आपस में बातें चली। नारद जी ने फिर पूछ लिया कि महाराज अमुक अमुक गांव है ना? कि हाँ है। उस जंगल में एक आपका भक्त है ना? कि हाँ है। वो महाराज आपकी आराधना कर रहा है? कि कर रहा है। तो वो आपकी आराधना कर रहा है तो महाराज कृपा करके आप ये बताइए कि उसको आप कब दर्शन देंगे? कहा, देखो नारद जी, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरे पर छोड़ दी जाती हैं। मैं कब दर्शन देऊं, कैसे दर्शन देऊं, इसके विषय में भक्त को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त का काम मेरा भजन करने का है और दर्शन देने का काम मेरा है, मुझ पर ही छोड़ देना चाहिए। कि नहीं महाराज, आखिर उसने पूछा है, मैं क्या जवाब दूं? तो भाई जवाब तो बड़ा टेढ़ा है, उस जवाब से तो शायद उस भक्त के मन में दुख होगा। तो अभी महाराज कुछ तो जवाब है ही, बताना तो पड़ेगा। अच्छी बात है, ऐसा है कि वो भक्त जिस इमली के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, उस इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। तो नारद जी महाराज का मुंह छोटा हो गया, बड़े हताश हो गए नारद जी। लेकिन नारद जी ने उस भक्त के सामने स्वीकार कर लिया था कि भगवान का उत्तर लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो नारद जी महाराज आए, अब वो भक्त के पास आए, नारद जी का मुंह लटक गया, नारद जी बड़े दुखी। भक्त ने पूछा कि महाराज आप भगवान के पास गए? कि हाँ भगवान के पास गया। मेरे विषय में बात हुई? कि अरे तुम्हारे विषय में तो बात हुई थी। मेरे विषय में कुछ भगवान ने कहा? कि हाँ कुछ कहा। मेरे विषय में भगवान ने कुछ कहा? महाराज बताइए क्या कहा, बताइए क्या कहा। मेरी चर्चा भगवान तक पहुंच गई और वो सुनकर के आप आए और भगवान ने कुछ जवाब दिया, मैं तो महाराज निहाल हो गया। बताइए क्या कहा, भगवान ने क्या कहा? कि बताने लायक बात नहीं। नहीं महाराज, मेरे विषय की चर्चा हो और आप बतावे नहीं। भगवान ने मना तो नहीं किया है? कि नहीं मना तो नहीं किया है, लेकिन मैं उचित नहीं मान रहा हूं। नहीं महाराज, आप जो भी बात चली हो मुझे बता दीजिए। बात ये हुई भाई, उन्होंने कहा है कि जिस इमली के नीचे तुम मेरा भजन कर रहे हो, इस इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं तुमको दर्शन दूंगा। ओहो, इतने जन्मों के बाद मुझे दर्शन तो देंगे ना? ओहो, दर्शन तो होंगे ना इतने जन्मों के बाद ही सही। ऐसा मस्ती में नाचने लगे, इतने उनको आनंद आया, इतने भी भगवान प्रकट हो गए। वह भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी ने कहा, महाराज ये क्या करते हो? एक तरफ तो आपने कहा कि मैं इतने जन्मों के बाद आके दर्शन दूंगा और आप तो मेरे आने के साथ साथ ही आ गए। कि देखो मैं अपनी जबान को नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं भक्त की भक्ति को। यदि भक्ति वह कम मात्रा में कर रहा है तो उसको दर्शन बाद में होंगे, और यदि उसकी भक्ति बहुत तेज बढ़ जाती है तो भाई फिर बैकुंठ में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। इस कारण से मैं इसकी जब ये आशा बनी कि इतने जन्मों के बाद भगवान मुझे मिलेंगे, ये जो विश्वास जना बना है उस विश्वास के कारण से मुझे तत्काल आना पड़ा है। तो भाई जब भक्त के मन में विश्वास हो जाता है कि इतने दिन बाद ही सही भगवान मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे और मुझे भी मुझे मिलेंगे, तो बस उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। तो ये बात नारद जी महाराज समझे हुए थे। यहां आकाशवाणी में कह दिया कि अगले प्रलय के बाद मैं तुमको मिलूंगा, तो नामानंतस्य हतत्रप पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण, भगवान की लीलाओं को याद कर रहा था मैं, और मैं बड़े स्वच्छंद भाव से, उन्मुक्त भाव से, बिना किसी लज्जा के मैं भगवान का नाम ले रहा था। जहां भी जाऊं भगवान का कीर्तन करूं, भगवान की हरदम अपने पर कृपा मानूं, और फिर समय की प्रतीक्षा करता रहा कि अब कब वो प्रलय का समय आवे और कब मेरी मृत्यु आवे और कब मैं भगवान को प्राप्त हूं। देखो महात्मा है वो जीने में भी और मरने में कोई भेद नहीं मानते, क्योंकि जीना मरना ये दोनों का क्षेत्र अलग है और भगवत प्रेम का क्षेत्र कुछ दूसरा ही है। तो भाई ये शरीर किसी के साथ नित्य तो रहता नहीं है। काले प्रादुर्भूत काले, समय के ऊपर वो काल आ गया, मेरा प्रारब्ध क्षीण हो गया, पंच भौतिक शरीर था वो मेरा नष्ट हो गया, और महाप्रलय का समय था, ब्रह्मा जी के साथ में मैं भी भगवान के अंदर लीन हो गया। और उसके बाद जब भगवान ने सर्ग पैदा किया तो ब्रह्मा जी के शरीरों से मरीचि आदि पैदा हुए, तो उनके प्राणों से मैं भी पैदा हो गया। भगवान ने मेरे पर इतनी कृपा की, कहा कि देखो नारद, अब तुम जा रहे हो, तुम सत्संग किए हुए हो, महापुरुषों का संग किए हुए हो, और मेरा भजन और मेरा नाम लिए हुए हो, अब तुम जाओ संसार में ये वीणा ले जाओ और इस वीणा को बजाओ और सारे लोगों को तुम आनंदित करो। नारद तुम्हारे पर बहुत बड़ा दायित्व है, बिचारे संसार के विषयी जीव मात्रा स्पर्शे छया आतुर चित्तानाम, विषयों के जहर से बिचारे आतुर चित्त वाले, व्याकुल चित्त वाले ये प्राणी हैं, इनको जाकर तुम अपने वीणा के द्वारा मेरे लीलाओं को और नाम को गागा करके आनंदित करो, नहीं तो इन जीवों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी यहां जाओ और लोगों का कल्याण करो। तो भाई उसके बाद वेदव्यास जी महाराज, मैं तो भगवान के द्वारा दी हुई वीणा है, इस वीणा को लेकर के जहां कहीं भी जाता हूं, श्रीमन नारायण 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 का नाम सुनाता हूं, और आप जैसे महापुरुष जो कि सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान के विषय में मैं बताता रहता हूं, भगवान की लीलाओं को कहता रहता हूं, और आप भी महाराज भगवान की लीलाओं का विस्तार कीजिए और इन विषयी जीवों का कल्याण कीजिए। जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्म तोषणम, आपने जो कुछ मेरे विषय में पूछा वो मैंने बता दिया है, अब मैं आपको जो बताने लायक बात थी बता चुका हूं। आज्ञा लेकर के फिर नारद जी महाराज वहां से अपने मन में आए उस दिशा की ओर रवाना हो गए। जब नारद जी महाराज चले गए तो ऋषियों का एक स्थान है शाम्याप्रास, जहां बहुत अच्छे अच्छे ऋषि लोग रहते हैं, वहां नारद जी ये वेदव्यास जी महाराज विराजमान है। वहां वेदव्यास जी महाराज एकांत में बैठे हुए थे और उन्होंने ध्यान देवे हो उस समय में भगवान का ध्यान किया। जो ही भगवान का ध्यान किया तो उस समय में एक दिव्याति दिव्य पुरुष के दर्शन किए, और साथ ही साथ उस पुरुष के आश्रित जो माया है उस माया का भी दर्शन किया। देखो भगवान का ध्यान कर रहे थे, माया का ध्यान नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने माया को देखा, और वो माया भी तद अपाश्रयाम, उसी पुरुष पर आश्रित थी माया, माया कोई स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं थी। जो ही उस माया को देखा और पुरुष को देखा, तब वेदव्यास जी के समझ में आया कि बस यही बात है, ये पुरुष है परमात्मा है, जीव के लिए परमात्मा प्रापणीय है, और इसी माया के संसर्ग में जीव जो कि गुणों से अतीत है अपने आप को त्रिगुणात्मक मान लेता है, और ये सबसे परे होकर के भी इस माया के साथ घुल मिल जाता है, तब से ये सारा का सारा अनर्थ पैदा होता है। इस अनर्थ को दूर करने के लिए ये माया जिसके आश्रित है, ऐसे परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। अनर्थोपशमम साक्षात, इस सारे अनर्थों की शांति भक्ति योग के द्वारा ही हो सकती है। अतः मुझे भक्ति के प्रचार के लिए ये पुराण संहिता बनानी चाहिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत बनाई और भागवत बना करके सुखदेव जी को पढ़ाया। अब प्रश्न हुआ कि सुखदेव जी तो चले गए थे, वे वापिस वेद व्यास जी के पास कैसे आए? तो भाई पहले उन्होंने जब वेद व्यास ने भागवत बना ली, भागवत बना करके अपने शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया। भागवत पढ़ाने के बाद वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि भाई देखो, अब आप लोग चारों दिशाओं में जाओ और भागवत के श्लोकों को तुम बड़े प्रेम से गाते रहो। मेरी भागवत में ये विशेषता है, वो मेरे कारण से नहीं, भगवान की लीलाओं के कारण से, भगवान के ऐसी कुछ कृपा है इस ग्रंथ पर कि जरूर इससे सुखदेव कहीं भी होगा आकृष्ट होगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े जपी और दूसरे जितने भी अध्यात्म में चलने वाले हैं, वो भागवत में आकृष्ट न हो ऐसा संभव नहीं है। तो तुम गाते चले जाओ, जहां भी सुखदेव होगा वो भागवत से आकृष्ट होकर मेरे पास आ ही जाएगा। अब वो वेद व्यास जी के शिष्य कोई पूर्व में गए, कोई पश्चिम में गए, कोई दक्षिण में गए, कोई उत्तर में गए। अब एक टोली उत्तर में गई हुई थी, अब वो भागवत के श्लोक पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते इधर वेद व्यास, इधर सुखदेव जी महाराज किसी कंदरा के अंदर बैठे हुए समाधि में स्थित थे। जो ही समाधि में स्थित थे तो उन्होंने एक भागवत का श्लोक सुना, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेम। और तत्काल एक दूसरा श्लोक और सुना कि वर्रा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर् वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। पहले श्लोक का तो अर्थ यह है कि ओहो, ये बकासुर की बहन पूतना मारने की इच्छा से कालकूट जहर को अपने स्तनों पर लगाकर जिस बालक के पास आई थी मारने की इच्छा से, उसके ऊपर ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि वह जो स्थान यशोदा को मिला वो स्थान पूतना को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस जीव के लिए ऐसा और कौन दयालु मिलेगा जिसकी शरण में जाए। मारने की इच्छा रखने वाली को पालने की इच्छा करने वाली का स्थान दे दिया। इतना बड़ा क्षमाशील संसार में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, इसलिए जीव को उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। ये तो था भगवान का भाव माधुर्य और एक भगवान का रूप माधुर्य जो दूसरा श्लोक था। कितने भगवान मीठे हैं, कितने भगवान श्रेष्ठ हैं। तो जब देखा कि मारने की इच्छा से पूतना आई, क्या लीला है जरा मैं सुनूं, भगवान को कौन मार सकता है, वो तो भगवान है, वो तो है ही नित्य और वो कभी मर सकते नहीं है, क्या उनको भी कोई मारने के लिए आया था? फिर विचार आया कि मारने का प्रयत्न किसी ने किया होगा, प्रयत्न चला नहीं, लेकिन उन्होंने जो सत प्रयत्न किया उसके कल्याण के लिए, जरा इस कथा को मैं सुनूं तो सही, क्या बात है, एकदम कान फड़फड़ाए। और इधर भगवान का फिर रूप माधुर्य भी सुन लिया कि वर्रा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। आहो कितना सुंदर भगवान ने मोर मुकुट पहन रखा है, कमर में एक फेटा बांध रखा है और बहुत ही सुंदर एक नट कैसा वेश बना रखा है। गायों को वो वृंदावन में चरा रहे हैं और चराते चराते अपने साथियों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और वो बड़ी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से बांसुरी के जो छेद हैं उनके ऊपर वे वायु को पूर रहे हैं और उनको अंगुलियों को नचा रहे हैं। बड़ा सुंदर वे शब्द कर रहे हैं, वैजयंती माला धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए भगवान की बड़ी विचित्र शोभा है। वे अपने सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा भगवान का जो ही रूप सुना तो उनके मन में रूप माधुरी भी बस गई और भाव माधुरी भी बस गई। समाधि अमाधि सब छोड़ करके गुफा के बाहर आए और कहने लगे, अरे कौन बोल रहे हैं, किसकी आवाज आ रही है? अब वो वेद वो सुखदेव जी की आवाज में भी इतना प्यार पूर्वक आह्वान था, अरे कौन बोल रहे हैं? ऐसी जब प्यार भरी आवाज सुनाई दी तो वे वेद व्यास जी के शिष्य दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, ये तो हमने बोला है। अरे तुमने ये श्लोक कहां से याद किए? कि हमने श्रीमद भागवत से ये याद किए। ओहो भागवत, कौन भागवत, किसने बनाई? कि भागवत तो वेद व्यास जी ने बनाई। कौन वेद व्यास जी? वेद व्यास जी जो सुखदेव के पिता हैं। तो सुखदेव तो मैं ही हूं, तो आप सुखदेव हैं तो ये आपके घर की संपत्ति है महाराज। अब ये भागवत तो आपके पिताजी ने बनाई है, तो मैं अब पिताजी के पास जा रहा। नहीं नहीं महाराज, आप तो ध्यान कीजिए, अच्छेद्य अभेद्य अनंत अखंड एक रस जो परब्रह्म परमात्मा है, आप उसका ध्यान कीजिए, निर्गुण निराकार में स्थित होइए। आपको तो महाराज इन बातों से क्या रहे? नहीं, मुझे बताओ, ले चलो मुझे वेद व्यास जी महाराज के पास, मुझे ज्ञान लेना है। तब वे शिष्य गए और वेद सुखदेव जी महाराज को लेकर के वेद व्यास जी महाराज के पास पहुंचाए और वहां फिर वेद व्यास जी महाराज से उन्होंने भागवत पढ़ी और वही भागवत पढ़ करके सुखदेव जी महाराज फिर आगे सब जगह प्रचार किए। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने जब भागवत सुनी तो उनको भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन हुए तो कहने लगे, देखो सुखदेव, हमने तुमको भागवत दिलवाया है, तुमको एक काम हमारा भी करना पड़ेगा। कि महाराज जो आज्ञा है सो दे। तो हमारी आज्ञा यही है कि एक परीक्षित नाम का राजा होगा, तुम मालूम कर लेना कि वो कब मरने वाला है, ये काम तुम्हारा है। जब वो प्रायोपवेश के लिए बैठ जाए, तुमको कोई बुलाने नहीं आएगा, तुम स्वतः वहां पर चले जाना। वो तुमको जानेगा नहीं, लेकिन तुम जना दो, तुम अपने आप ही जना देना और जो भागवत तुमने सुनी है उसी भागवत को परीक्षित को ले जाकर तुम सुना देना। ये 7 दिन तुम मुझे दे दो, बाकी गायब हुए उतनी देर तुम ठहरे हो, तुम्हारी मर्जी है। 7 दिन मेरे कहने से तुमको भागवत के लिए अर्पित करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज जो आज्ञा है, हम परीक्षित को भागवत सुना देंगे, लेकिन भागवत हमको इतनी मीठी लगी है, हम भागवत को छोड़ नहीं सकते हैं। अब ये भागवत का ही मनन करते रहते थे और विचरण करते थे। सौनक जी महाराज कहते हैं कि महाराज आखिर इस भागवत में ऐसी क्या बात थी? कि बात यही थी भाई कि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर, भगवान के दिव्य गुण ऐसे हैं कि वे अपने आप आकृष्ट कर लेते हैं। अरे भागवत हम सुनते हैं तो ये हमारी विशेषता नहीं है, भगवान के गुण ऐसे हैं कि जो हमको दूर बैठे हुए खींच लाते हैं। तो ये भगवान के गुणों का ही कुछ ऐसा प्रभाव है। अतएव सुखदेव जी महाराज जो निवृत्ति निरत थे, निवृत्ति में ही लगे रहने वाले, और वे आकर के भगवान के दिव्य गुणों को सुने हैं। ये तो हम तुमको बता ही रहे थे, हम थोड़ा परीक्षित के विषय में तुमको सुनाना चाहते हैं। देखो अब ध्यान देना, अब महाभारत की उस लीला को, उस कथा को बता रहे हैं जहां महाभारत की समाप्ति है। महाभारत की जहां समाप्ति है, भागवत का वहां प्रारंभ है। दुर्योधन रणांगण में पड़ा हुआ है, भीम की गदाओं से घायल हुआ हुआ वो दुर्योधन हाय हाय कर रहा है। उस दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा पहुंचे और अश्वत्थामा ने जाकर कहा कि महाराज आप चिंता न करें, अब ये जो कुछ प्रारब्ध है, आपका मरना है सो तो है ही, लेकिन आपके मृत्यु से पहले पहले मैं 5 पांडवों का सिर आपके पास में ले आता हूं। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा गए। भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि आज ये सब कुछ होने वाला है, उन्होंने आज 5ों पांडवों को कहीं और दूसरे शिविर में सुला दिया, और द्रौपदी के 5 बेटा थे वे दूसरे शिविर में सो रहे थे। वो रात को गया अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने जाकर पांडवों को देखा तो नहीं मिले। मन में विचार किया कि 5ों को मारने की आज प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली, लेकिन वो 5ों तो यहां से गायब हो गए, अब रात में मैं कहां तक ढूंढूंगा। तब देखा कि प्रतिज्ञा को पूरा कर लेता हूं, इन 5 पांडवों के बेटों को मार करके, ये भी तो पांडव हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया और 5ों बच्चों को मार करके और वो उनका सिर ले जा करके और दुर्योधन को दिया कि देखो हम पांच पांडवों को मार दिए हैं, ये हमारी प्रतिज्ञा तो सत्य हो गई है, अब वो पांडव नहीं मरे हैं जिनको मारना चाहिए था, पांडवों को तो मैंने मार ही दिया है। ध्यान देवे अब दुर्योधन के लिए, यहां भागवत का पात्र हो गया दुर्योधन, और वो भी पहले स्कंद का पात्र है, इसलिए दुर्योधन आज अपने जीवन में किसी पाप से घृणा किया है तो आज वो घृणा किया है। दुर्योधन कहता है अरे तुम ब्राह्मण हो अश्वत्थामन, तुम योद्धा हो ब्राह्मण हो, ये आज तुमने महान पाप किया। अरे पापी भी पाप की आज निंदा कर रहा है, क्यों? भागवत के पहले स्कंद का पात्र हो गया इसलिए। उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर रयंती, कह लगे तुमको शर्म आनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे इनके द्वारा दिया हुआ पिंडदान मुझे मिलता। अरे आज तुम भीम को मार के लाते, अर्जुन को मार के लाते, आप तुम युधिष्ठिर को मारते, नकुल सहदेव को मारते तो हम मरते मरते प्रसन्न होते, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मारा है, ये तो हमारे भी तो बच्चे वैसे ही है, इनका पिंडदान हमको मिलता है, ये तुमने पाप किया है, महान पाप किया है, हम इस पाप की जितनी निंदा करें उतना ही थोड़ा है। वो दुर्योधन ने ऐसी बात कही। इधर वो बिचारी द्रौपदी खूब चिल्लाई, और प्रातःकाल हुआ तो वहां अर्जुन पहुंचे, क्या बात है? वो चिल्लाती कहने लगी कि देखो हमारे बेटों को अश्वत्थामा ने मार दिया है। इतना क्रोध आया अर्जुन को, भगवान से कहा महाराज मेरा रथ तैयार कीजिए। भगवान ने तत्काल रथ तैयार कर दिया कि महाराज जिस मार्ग से वो गया उसी मार्ग की तरफ ये रथ चलना चाहिए। बड़े वेग के साथ वो रथ जाने लगा। जब वो रथ बहुत तेजी के साथ जाने लगा तो अश्वत्थामा ने देखा कि ओ ये तो रथ में बैठे आए मुझे पकड़ने वाले हैं। उसी समय में अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था, उसने देखा कि अब ब्रह्मास्त्र छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देखकर भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, इस ब्रह्मास्त्र से अब मैं कैसे अपना पिंड छुड़ाऊं? आप तो महाराज अपने ज्ञान में स्थित हैं, माया आप तक पहुंचती नहीं है, और हम लोग तो महाराज माया में आविष्ट हो ही जाते हैं, कृपा करके आप उपाय बताइए कि इस ब्रह्मास्त्र से हम कैसे छुटकारा प्राप्त करें। भगवान ने कहा अर्जुन डरते क्यों? आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है लेकिन ब्रह्मास्त्र का संहार करना नहीं जानता, तुम ब्रह्मास्त्र का संहार कर लो। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, सारे प्रजा में बड़ा विप्लव हुआ और अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींच लिया। अब सबको बड़ा आनंद मिल गया और तत्काल जाकर के अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और पकड़ करके जो ही उसको मारना चाहते थे, अर्जुन प्रतिज्ञा करके आए थे कि द्रौपदी अभी तुम मरे हुए बेटों के लिए स्नान मत करना, जब तक मैं उस आतताई का सिर काट करके तुम्हारे सामने न रख दूं और तुम उस सिर के ऊपर पैर रख करके और खड़ी न हो जाओ तब तक तुम्हें स्नान नहीं करना है, किसी लकड़ी के पाटे पर बैठकर स्नान नहीं करना है, उस आतताई की खोपड़ी पर बैठकर तुमको स्नान करना है, प्रतीक्षा करो। ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्जुन आए थे, और यहां आए अर्जुन ने अश्वत्थामा को बड़े गौर से देखा और फिर उसको पकड़ करके अपना जो दुपट्टा था उस दुपट्टे से उसको रथ से बांध दिया, और बांध करके बड़े घसीटते हुए उसको ले जाने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो, क्यों देरी करते हो ऐसे आत्ताई को मारने में? जो प्रमत्त को मारता है, उन्मत्त को मारता है, सोते हुए को मारता है, स्त्री को मारता है, बालक को मारता है, शरणागत को मारता है, और रथ से विहीन जो योद्धा है उसको मारता है, और जो डरे हुए को मारता है, ऐसा आतताई उसको मारने में कोई पाप नहीं है, तुम इसको मार क्यों नहीं लेते? द्रौपदी के सामने तुमने प्रतिज्ञा भी तो की थी, इसलिए जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन भगवान के कहने में एक बड़ा विचित्र अभिप्रेत अर्थ था, अर्जुन समझ गए कि भगवान परीक्षा के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा और वे घसीटते घसीटते उस रथ के पीछे तो बांध तो दिया ही था, वो जमीन पर घसीटता हुआ लाया गया और ले जाकर के द्रौपदी के शिविर के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा रथ की गड़गड़ाहट के साथ कि हाँ हमारे प्राण प्रियतम आए हैं और श्री कृष्ण भी इसी रथ से उतर रहे हैं, और देखा कि पीछे किसी को बांध के लाए, तत्काल उसको रस्से में बंधा हुआ देख करके और कहा अच्छा ये तो अश्वत्थामा ही है। अर्जुन ने ले जाकर उनको उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा देखो द्रौपदी ये आत्ताई है। द्रौपदी ने देखा, अब देखना हमारी भारतीय संस्कृति में रहने वाली माताएं कितनी कितनी क्षमाशील हैं। द्रौपदी ने देखा कि ओहो ये आत्ताई और कोई नहीं, रात्रि में मैं इनको पहचान नहीं सकी, ये तो द्रोणाचार्य के पुत्र है। तत्काल दौड़ी दौड़ी गई और अश्वत्थामा के सामने जाकर हाथ जोड़ करके बड़े नम्रता से उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितरां गुरु, छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं। और इतना ही नहीं, एक तो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण होने से गुरु, और इतना ही नहीं इनका तो गुरुत्व और भी ज्यादा हम लोगों पर है, क्योंकि इन्हीं के पिता ने हमको आपको धनुष विद्या सिखाई है, बड़े गुप्त गुप्त आपको अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, भवता शिक्षित है, आपने उन्हीं की कृपा से सब कुछ सीखा है। आज द्रोणाचार्य नहीं है तो द्रोणाचार्य की मूर्ति है साक्षात अश्वत्थामा है, आपको इनका पाप देखने का कोई अधिकार नहीं है, आप धर्म को जानने वाले हैं महाभाग, आपके धर्म के आचरण से हमारा हमारा कुल है गौरवान्वित होता है, आपको किसी प्रकार से मार करके पाप का भागी नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं रो रही हूं, लेकिन आप विचार करो कि जिस दिन ये अश्वत्थामा मारे जाएंगे उस दिन विधवा मां रोएगी इनके लिए, माने इनकी मां विधवा हो गई है अश्वत्थामा की मां, वो रोएगी, मैं रो रही हूं आज सदभा मां रोऊंगी, लेकिन इनकी विधवा मां रोएगी। आप स्त्रियों के दुख को नहीं जानते, बेटे के बिना उनका कितना जी कलपता है, मां रो दी दस्य जननी, रोने का काम एक मुझे दे दीजिए, कृपी न रोवे अश्वत्थामा की मां न रोवे, बस ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप छोड़ दीजिए और सम्मान के साथ आप इनको विदा कीजिए। ऐसी धर्म पूर्वक और न्याय पूर्वक बात सुनी, राजा युधिष्ठिर के नेत्रों में बड़े प्रेम से स्नेह से आंसू आ गए कि आहो बड़े भाग्यशाली हम कि हमको ऐसी रानी मिली है। नकुल और सहदेव भी बड़े द्रौपदी के इस भाव को देख करके आनंदित हुए। भगवान तो मनी मन में आनंदित थे कि देखो इससे द्रौपदी का कितना विलक्षण भाव प्रकट होता है, परंतु भीम वहां पर इस बात को सह नहीं सके। भीमसेन ने कहा, देखो भाई अर्जुन, बात तो यही है कि जो तुम करना चाहते हो, मेरा बस चले तो इसका गला घोट के अभी मैं पूरा कर दूं। न भरतुर नात्मनस्तार्थी युवाहन सुप्तान शिशुन वृथा, हम इस ब्राह्मण से पूछते हैं कि बताओ इन बच्चों के मारने से तुम्हारा और तुम्हारे शत्रुओं का कौन सा काम सिद्ध हुआ है? ऐसे आतताई को मारना ठीक है अर्जुन, नहीं तो ये आतताइयों की परंपरा, अनर्थों की परंपरा बहुत लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। भगवान उस समय चुपचाप खड़े हुए थे। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा और इधर युधिष्ठिर की ओर देखा, भीमसेन की ओर देखा, फिर भगवान की ओर देखा। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने कहा, देखो भाई भीमसेन कहता है वो बहुत ठीक बात कहता है अर्जुन, वो और हे अर्जुन द्रौपदी जो बोलती है वो बात भी ठीक बोलती है, और मुझे तो इन दोनों की बातें अच्छी लगती हैं, अब जो तुमको चाहे जो काम कर लेना चाहिए। भगवान तो बीच के रास्ते से निकल गए। सूत जी महाराज कहते हैं, अर्जुन जब ये बात जाने कि हरेर हार्दम अथासिना, भगवान के हृदय की बात जान गए, यदि भगवान भीमसेन की बात का ही समर्थन करते तो द्रौपदी का नाम बीच में नहीं लेते और वे स्वयं द्रौपदी को धमका सकते थे, लेकिन द्रौपदी को कुछ नहीं कहा भगवान ने, इसका अर्थ है द्रौपदी का मत भगवान को अभीष्ट है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने हाथ में तलवार ली और अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी तलवार के अणि से उन्होंने उसी समय में उस मणि को तो ले लिया और उसके सिर वगैरह मुंडित कर दिए, उसको वहीं विदा कर दिया। सच पूछा जाए तो हे सोनकादि ऋषियों, ब्राह्मण का वध है वो शरीर से ही वध नहीं होता है, ब्राह्मण का तो धन ले लेना, उनको देश निकाला दे देना और उनको उनको इस प्रकार से अपमानित कर देना, यही उनका सबसे बड़ा वध है। उसके बाद सब लोगों ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए वे अपना पिंडदान दिए, बच्चों के लिए भी पिंडदान दिया और गंगा जी में जाकर उन्होंने स्नान किया।